Komşu. Mahabharat mı? Cub. Yud. Çaluta. और कर्ण की मृत्यु हो गई थी। रात के समय कुंती कर्ण के शव के पास बैठकर रो रही थी और वहां पर युधिष्ठिर, अर्जुन और श्री कृष्ण आते हैं। युधिष्ठिर पूछता है कि हे माते, हमारे प्रधान शत्रु के शव के आगे आप क्यों विलाप कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहता है कि उन्हें रोने दो। अर्जुन कहता है परंतु इस सूत पुत्र के आगे, हे माँ, आप क्यों रो रहे हैं? कुंती कहती है कि जाओ, ये प्रश्न मुझसे ना पूछो, अपने सैनिकों के शव उठवाओ। परंतु युधिष्ठिर फिर कहता है, आखिर हम अपनी मां को इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? कुंती कहती है, जो बता दू तो हे अर्जुन, तुम्हारे कांधों पर जो गांडीव है वो गिर पड़ेगा। अर्जुन फिर कहता है कि इस राधे के शव पर आप फिर क्यों विलाप क्यों कर रहे हो? कुंती कहती है, वो राधे नहीं है। युधिष्ठिर कहता है, फिर कौन है? कुंती कहती है, जो बता दू तो ये सारी पृथ्वी हिल जाएगी। वो राधे नहीं, कौंतेय है। कौंतेय, हाँ, कौंतेय, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता। युधिष्ठिर कहता है, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई, लाखों लाखों सैनिक मारे गए और इस युद्ध के लिए केवल आप एकमात्र जिम्मेदार हो। और फिर युधिष्ठिर एक शाप भी देता है। जीवन रहस्यों से भरा है, जितना हम जानते हैं उससे परे बहुत कुछ है जो अब तक हमने नहीं जाना न समझा। जितने रहस्यों को हम जानते हैं उस रहस्य में भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो शायद हमारी खोज से हम कभी नहीं जान पाएंगे। वो रहस्य स्वयं ही यदि कृपा करे तो हमारे हृदय में प्रकट होंगे। रहस्य के भीतर जो रहस्य छिपा होता है उसको कहते हैं रहस्यांतर। तो आज से इस नई श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं। जो रहस्य किसी एक व्यक्ति ने जाना, यदि उस रहस्य से विश्व का कल्याण हो सके यदि उस रहस्य से लाखों करोड़ों आत्माओं से कोई एक आत्मा का हीलिंग हो सके, तो कार्य पूरा हुआ। नाहं प्रकाशः सर्वस्य। भगवान कहते हैं भगवद गीता सातवां अध्याय 25वां श्लोक, योग माया समावृतः, मैं अपनी योग माया से आवृत हूँ, छिपा हुआ हूँ, मैं कैसे प्रकट होता हूँ कोई नहीं जानता, ना कोई समझता है। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, मूर्ख मुझे नहीं जानते। लोको माम अजव्यव्यम, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, उन्हें यह नहीं पता। भगवान को कैसे पहचाने, उसकी केवल एक ही विधि है, उसकी खुशबू से। रहस्यांतर, रहस्यांतर, अंतिम अध्याय का संचार, द लास्ट चैप्टर, और यह अध्याय का संचार होगा, प्रकट होगा हृदय में। रहस्यांतर, रहस्यांतर, सुनो परमात्मा की पुकार। क्या हम उस भगवान की पुकार सुन पाते हैं? वो बोल रहा है निरंतर। इस संसार के मेले को यदि हम देखें, तो यहां पर हर एक व्यक्ति दुखी है। ऐसा कोई भी नहीं है जो दुखी नहीं है। इस संसार के मेले में हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से, किसी ना किसी पीड़ा से, चिंता से, व्यसन से ग्रसित है। क्या हम करें कि अपने ही दुख से मुक्त हो जाए? क्या हम करें कि दूसरों को भी उनके दुखों से मुक्त कराए? रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, ये शब्द हमने आज से पहले कभी सुना ही नहीं है। रहस्यांतर, जैसे कहा, ये प्रकट हुआ है। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान, आकाश निशब्द है, उसमें एक गीत बजता है। कौन सा गीत है पता नहीं, कौन सा रहस्य है पता नहीं। ये ज्ञान क्या है? मुरली पढ़ना, एग्जाम देना, होमवर्क करना, क्या ज्ञान यहीं तक है? अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, एक है ज्ञान जो जाना जा सके, एक है अज्ञात जो नहीं जाना जा सकता है, और तीसरा है अज्ञेय, जिसकी कोई संभावना ही नहीं है कि उसे जाना ही जा सकता है इस जीवन में। अज्ञात को फिर भी ज्ञान से जाना जा सकता है। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली, और ये जीवंत होने का एक प्रूफ भी है कि उलझन है। सुकरात से कभी किसी ने पूछा था, आप हमेशा इतने बेचैन क्यों रहते हो? अतृप्त क्यों रहते हो? उसने कहा था, और पूछने वाले ने यह भी पूछा, इससे तो अच्छा है कि तुम किसी सुअर की तरह संतुष्ट रहो। उसने कहा था, मैं असंतुष्ट सुकरात रहना पसंद करूंगा, परंतु संतुष्ट कोई सुअर रहना पसंद नहीं करूंगा। जहां सारी खोज ही समाप्त हो गई है, निरंतर एक डिवाइन डिस्कंटेंट, निरंतर एक खोज, निरंतर एक जिज्ञासा, निरंतर एक उत्कंठा, और संसार का व्यक्ति भी बेचैन रहता है, परंतु उसकी बेचैनी संसारिक वस्तुओं के लिए रहती है, परंतु एक आध्यात्मिक खोजी भी बेचैन रहता है, क्योंकि उसकी बेचैनी हायर लेवल की बेचैनी है। वो उस परम सत्य को जानना चाहता है जो अब तक सब कुछ करने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, सारा अध्ययन करने के बाद, इतना योग कर लिया, सब कुछ जान लिया, अब कुछ सुनना बाकी नहीं, अब कुछ सुनाना बाकी नहीं, उसके बाद में भी हृदय में एक भाव है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। मन में है उलझन भरी, और मन प्रश्नों का कारखाना है एक, पर हृदय में आशा खिली, और हृदय एक झील है जिसमें सभी उत्तर है। ये यात्रा मन से हृदय की है, और हमारा सारा समय मन में व्यतीत होता है। मन में शोर है, हृदय में मौन है। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी, रहस्यांतर रहस्यांतर, अंतिम अध्याय का संचार, रहस्यांतर रहस्यांतर, सुनो परमात्मा की पुकार। तो आज से इस नई श्रृंखला में हम प्रवेश करेंगे, और इसमें उन रहस्यों को जानने के लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है समर्पण। समग्र समर्पण कि हे परम सत्य, तू जहां कहीं है मेरे हृदय में प्रकट हो। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, ऋषियों ने पुकारा था परमात्मा को। अंधकार से प्रकाश की ओर, आलोक की ओर ले चल। मन में उलझन है पर आशा है कि सत्य हम जानेंगे। और व्यक्तिगत रूप से हम स्वयं एक भयंकर हलचल से गुजरे, जिसमें सबसे पहले एक शॉक था, दूसरा बहुत बड़ा दुख, तीसरा एक बहुत बड़ा सुख, एक बहुत बड़ी खुशी, एक ऐसी खुशी जो इतनों वर्षों में कभी नहीं हुई। चौथा प्रश्न ही प्रश्न, और पांचवा भविष्य की योजना, अब मुझे क्या करना है। एक झंझावात, एक साइक्लोन, ऐसा आया جسد هلا دیا. जिसमें सारे भाव एक साथ प्रकट हुए और एक दिन के लिए नहीं, कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ मास के लिए. पश्चिम का एक कवि लॉर्ड बायरन अपनी कविता में लिखता है, आई स्लीप नॉट, द थॉर्न इन माई कोच. Each day, a trumpet soundeth in my ear, its echo in my heart. मैं सो नहीं पाता हूं क्योंकि मेरे बिस्तर पर, मेरी खटिया पर कांटे हैं. Each day, हर दिन एक आवाज गूंज रही है हृदय में, एक संकेत गूंज रहा और उसकी प्रतिध्वनि मेरे हृदय में है. इट्स एको इन माय हार्ट. डिवाइन डिस्कंटेंट, कि जो किया जो पाया वो पूर्ण नहीं था, अब बहुत कुछ जानना और पाना बाकी है, और उस पाने का माध्यम है मौन, और उस पाने का माध्यम है समर्पण.
राहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढोयं नाभि जानाति लोको छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान. रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान. अज्ञान के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, संकेत गूंज रहा, अब है अंधेर घड़ी. रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार, रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार. रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार,
एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसने देखा एक हिरन उसके पीछे आके खड़ा हो गया, और उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और उस हिरन को मार दिया. सोचने लगा अब लकड़ियां काटने का काम नहीं, क्योंकि यह हिरन मिल गया, इतना बेशकीमती हिरन, इसको बेचकर धन मिलेगा, जीवन आराम से कट जाएगा. परंतु अभयारण्य था, सुरक्षित वन था राजा का, किसी जानवर को मार नहीं सकते, उसने लगा कि अभी इस समय इसे नहीं ले जाऊंगा, इसे जमीन में गाड़ दूंगा और रात के समय फिर इस हिरन को ले जाऊंगा। उसने एक गड्ढा खोदा, उस हिरन को गाड़ा। दोपहर थी, झपकी लग गई, सो गया। जब उठा तो शाम हो गई थी, अंधेरा हो रहा था। उसने उस जगह को ढूंढा पर उसे उस जगह दिखी नहीं। उसे लगा शायद मैंने स्वप्न तो नहीं देखा। क्या ऐसा कोई हिरन पीछे आके खड़ा होता है? क्योंकि हिरन तो मनुष्यों को देख के ही भाग जाते। हो सकता है ये स्वप्न है, और ऐसा कोई हिरन था ही नहीं जिसको मैंने मारा और जिसको मैंने गाड़ा। अगर गाड़ा होता तो जगह मुझे दिख क्यों नहीं रही है? सब जगह ढूंढता है पर अंधेरा हो चुका था, उसे कुछ भी नहीं दिखता है। और फिर वो वापस घर लौटने को तैयार हो जाता है। आते आते उसे एक व्यक्ति मिलता है और उस व्यक्ति को वो कहता है, मैंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में मैंने एक हिरन को मार दिया और हिरन को गाड़ दिया, और कितना मूर्ख हूं कि अब मैं उस जगह को ढूंढ रहा हूं। और वो व्यक्ति चला जाता है, वो लकड़हारा। जिस व्यक्ति को वो बताता है वो व्यक्ति सोचता है, हो ना हो ये स्वप्न नहीं था, जरूर इसने हिरन को मारा होगा और जरूर हिरन कहीं गड़ा हुआ है। वो जाता है जंगल में, जंगल को खोजता है और उसे वो जगह दिखती है। वो जगह को वो खोदता है और हिरन मिलता है, उस हिरन को घर ले आता है। वो दूसरा व्यक्ति घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने एक लकड़हारे से मुलाकात की, उसने कहा था कि उसने एक स्वप्न देखा है कि उसने एक हिरन को मारा और जमीन में गाड़ दिया, पर उसे वो मिला नहीं और मैं जाके उसे ले आया। इस व्यक्ति की पत्नी उससे कहती है कि तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। ऐसे कभी होता है क्या कि कोई हिरन को मार दे और तुम उसे ले आओ? वो कहता, अगर स्वप्न हो तो ये क्या है, सामने तो हिरन है, फिर स्वप्न कैसे हो सकता है? परंतु वो व्यक्ति ये भी सोचने लगता है कि मैंने धोखा किया, ये हिरन मेरा नहीं है, उस व्यक्ति का है। और वो जो लकड़हारा है वो अपने घर जाता है और सोता है, और स्वप्न और एक देखता है कि जिस व्यक्ति को मैंने कहा था वो व्यक्ति उसी जंगल में फिर गया और उसे हिरन मिल गया। और वो व्यक्ति उठता है और तेजी से उस व्यक्ति के घर जाता है लकड़हारा, और देखता है वहां तो हिरन है। दोनों में लड़ाई हो जाती है, हिरन मेरा है, वो कहता है हिरन मेरा है। पत्नी कहती है स्वप्न होगा, लकड़हारे की पत्नी भी कहती है तुमने जरूर ही स्वप्न ही देखा होगा। केस कोर्ट में जाता है, वो जज, वो न्यायाधीश कंफ्यूज हो जाता है, ये है क्या, स्वप्न है या सत्य है, सत्य है या स्वप्न है? अगर स्वप्न है तो फिर ये हिरन कैसे, हिरन तो है। आखिरकार जज कहता है तुमको जो करना है कर लो, या ये करो कि आधा आधा हिरन बांट लो। अंतिम न्याय के लिए राजा के पास खबर जाती है। राजा कहता है, ये न्यायाधीश जब राजा को सुनाता है तो राजा कहता है, न्यायाधीश से जरूर ये सारी जो केस है ये एक स्वप्न होगा जो तुमने देखा है। ऐसा कभी होता भी है? राजा घर जाता है, सोने लगता है, अपनी पत्नी से, रानी से सारी घटना का विस्तार से वर्णन करता है। पत्नी कहती है, रानी कहती है, ऐसा कभी होता है कि आपने जरूर ये सब स्वप्न देखा होगा, चुपचाप सो जाओ। स्वप्न क्या और सत्य क्या, ये कैसे जाने? अब तक जो जीवन में हुआ वो क्या था, स्वप्न था या सत्य था? निंदा हुई, स्तुति हुई, स्वप्न था या सत्य था? शादी हुई, पति पत्नी बच्चे, ये सत्य है या स्वप्न? भगवान मिल गया, ज्ञान में आ गए, इतने वर्ष बीत गए, स्वप्न है या सत्य, इसका निर्णय कौन करेगा? हृदय में निरंतर एक छोटे बच्चे की तरह उत्कंठा हो कि हमें जानना है, हमें समझना है, ये क्या रहस्य है, इस सृष्टि का क्या रहस्य है, इस समष्टि का जो स्पंदन है वो मैं हूं। रहस्य में एक रहस्य छिपा है, खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ और अंतिम बचेगा मौन, रिक्तता, केवल मैं, जहां सारा मैं और मेरा गिर जाए। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। तो आज से इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज पांच कार्य करने हैं। सबसे पहले एक जर्नल बनाना है जिसका नाम होगा रहस्यांतर, और इस जर्नल में, इस किताब में अब तक जीवन के कौन से गुण रहस्य है जो मैंने जाने। उदाहरण, किसी भी मनुष्य का प्रेम एक भ्रम मात्र है, जो हम सोचते हैं कि मुझे वो कितना प्रेम करता है। ये रहस्य समझ में आया, पर ये रहस्य समझ में आने के लिए किसी व्यक्ति को पूरा जीवन दांव पे लगाना पड़ता है। एक छोटा सा रहस्य समझने के लिए कि जिस व्यक्ति से मैं मुक्त होना चाहता हूं और जिसके लिए मैं कहता हूं मेरा सबसे अधिक प्रेम है, उसके लिए प्रेम तो कभी था ही नहीं, था तो केवल वासना। एक जर्नल जिसमें यह लिखना है रात को कि आज सारे दिन भर में मैंने कौन सा नया सत्य जाना। मुरलियां बहुत पढ़ ली, होमवर्क बहुत कर लिए, ट्रॉफियां बहुत ले ली, एग्जाम बहुत दे दी, पर रहस्य को अब तक नहीं जाना। वो रहस्य चाहे मुरली का ले लो, आज की मुरली, फरिश्ता, चार परिभाषाएं हैं, संसार और संस्कार से संबंध नहीं, डबल लाइट, बेहद और सबका, सब मेरे, मैं सबका। जीवन में चरितार्थ कहां तक हुआ है ये? कोई एक ही वाक्य ले लो और सोचो इसका रहस्य क्या है। ये पहला काम। दूसरा कार्य आज का, ड्रॉ द फाइनल चैप्टर। सोचो आज से 30 दिन के बाद यदि मुझे शरीर छोड़ना है या शरीर छूटने वाला है तो मैं क्या करूंगा? या किसी की निंदा करूंगा, किसी का अपमान करूंगा, किसी को दुख दूंगा? हमारे मुख से संकल्प भी ना हो किसी की निंदा का, मुख तो बहुत दूर, मन से भी नहीं। फाइनल चैप्टर, उसका एक दृश्य बनाना है कि मैं यदि शरीर छोड़ू तो कैसे शरीर छोड़ूंगा, सुखद आनंद से कि दुख में, पीड़ा में, दर्द में, हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, लाइन, ट्यूब, ड्रेन्स, ऐसे, या फिर तुरंत। यदि मुझे ऐसे शरीर छोड़ना है तो उसकी क्या तैयारी है, उसका क्या पिक्चर है, उसका क्या विजुअल है, उसका एक चित्र बनाना है। तीसरा, डिजिटल फास्टिंग आवर। आज सारे दिन भर में 1 घंटे तक अधिष्ठान में बैठना है। अधिष्ठान अर्थात एक ऐसी बैठक जिसमें शरीर स्टैचू की तरह हो जाए, जैसे बुद्ध और महावीर बैठे, जैसे ब्रह्मा का चित्र है, हिलना ही नहीं, और सुनो परमात्मा की पुकार। परमात्मा निरंतर पुकार रहा है, निरंतर हमसे बातें कर रहा है, निरंतर व्यक्तिगत और पर्सनल रूप से हमें कुछ कह रहा है, पर हमें सुनाई नहीं दे रहा है। उसकी आवाज को सुनना है, वो कह क्या रहा है मुझसे, और बैठना है स्थिर। कोई दोपहर का समय ले लो, और यदि शरीर में दर्द हो तो जानना शरीर की जो पीड़ा है वो एक भ्रम मात्र है। दर्द मिथ्या है। देखते रहो उस दर्द को, उन पैरों को। अगर बहुत अधिक दर्द है तो चेयर पर बैठो, अन्यथा जमीन पर, बिना किसी सपोर्ट के स्थिर, आंखें बंद और सुनो, क्या वो पुकार रहा है मेरे लिए? क्या उसका आदेश है? वो मुझसे क्या कह रहा है कि तुझे क्या करना है? ये तीसरा, उस समय मोबाइल 1 घंटे के लिए बंद, डिजिटल फास्टिंग। चौथा काम, ट्री ऑफ सीक्रेट्स, एक झाड़ निकालना है, नीचे लिखो साइलेंस और ऊपर लिखेंगे रहस्यांतर। और उस झाड़ में जो टाल टालिया है उसमें जीवन भर के क्या रहस्य है उसका वर्णन लिखना है, 1-2 लाइन। मुझे संतुष्टता खोजनी नहीं है, मैं स्वयं संतुष्टता हूं, एक रहस्य है जो जाना है। कितना भी खाओ, कितना भी खाओ, पेट कभी भरता ही नहीं है, वो भ्रम है एक, वो आदत मात्र है। ईटिंग इज जस्ट अ हैबिट, एन एक्वायर्ड हैबिट, दैट्स इट। ये शरीर बना हुआ है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है, दैट्स इट। जैसे मोबाइल चार्जर चाहिए, उसे मटेरियल नहीं चाहिए, केवल चार्ज करना है उस ऊर्जा से। और पांचवा कार्य आज का, आकाश गीत लिसनिंग, आकाश को देखना है 10-15 मिनट, और आकाश में जो आवाजें हैं, पक्षियों की, चिड़िया, हवा की, उस आवाज को सुनना है। तो आज के ये 5 कार्य है, पहला एक जर्नल, दूसरा विजुअल बनाना है मैं शरीर छोड़ूंगा तो कैसे, तीसरा 1 घंटा तक बैठना है, कभी भी 1 घंटा नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, पर भीतर की आवाज सुनना है कि वो परमात्मा शिव बाबा मुझसे क्या कह रहा है, तीसरा एक झाड़ बनाना, चौथा आकाश गीत लिसनिंग। ओम शांति।
अंतिम ज्ञान ये शब्द आकाश में, गीत एक अनजान, रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, ये शब्द आकाश में, गीत एक अनजान। अज्ञान के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, संकेत गूंज रहा, अब है अंधेरा।